ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त उपकुलपतियों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद पर मान बहादुर कार्की को नियुक्त करने की संवैधानिक परिषद ने की सिफारिश। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने चालू आर्थिक वर्ष के मार्गशीर्ष तक की 23 अरब 44 करोड़ बकाया राशि की भुगतानी। मानसून से संभाव्य आपदा में जनधन की बड़ी क्षति न होने देने और उद्धार कार्य को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस की पूर्व तैयारी हुई पूरी। मानसून के दौरान काठमांडू घाटी में मेलमची पेयजल की आपूर्ति रहेगी बंद। और पाकिस्तान में एक बस हादसे में कम से कम 40 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री तथा विश्वविद्यालयों के सह कुलपति सस्मित पोखरियाल ने आज मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त उपकुलपतियों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री एवं विश्वविद्यालयों के कुलपति बालेंद्र शाह ने आज ही 7 विभिन्न विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की नियुक्ति की थी। विश्वविद्यालय उपकुलपति चयन एवं सिफारिश समिति द्वारा सिफारिश हुए उम्मीदवारों में से कुलपति शाह ने उपकुलपतियों की नियुक्ति की। मंत्री पोखरियाल ने नवनियुक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक डॉ भोला थापा, सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति किशन दत्त भट्ट, मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय के उपकुलपति ऋषिराम कटेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्याम नारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति देवेंद्र अधिकारी और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के उपकुलपति सुजन बाबू मरहट्टा को शपथ दिलाई। संवैधानिक परिषद ने मान बहादुर कार्की को मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आयोजित परिषद की बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्की की सिफारिश करने का निर्णय किया गया। बैठक में रिक्त निर्वाचन आयुक्त पद पर डॉ राजीव सुब्बा और आषाढ़ 23 से रिक्त होने वाले निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए गुरुप्रसाद वागले की सिफारिश करने का भी निर्णय किया गया। बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए परिषद की सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा की उपसभामुख रूबी कुमारी ठाकुर ने बताया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित नामों की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में विनियोजन विधेयक 2083 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय योजना आयोग और गृह, रक्षा, विदेश, वित्त, अवसंरचना विकास, ऊर्जा, जल संसाधन एवं सिंचाई, कृषि, वन एवं पर्यावरण तथा उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालयों के बजट विनियोजन पर चर्चा हुई। चर्चा में सांसदों ने आवश्यकता के आधार पर बजट आवंटित करने, राष्ट्रीय गौरव की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने लगायत बातों पर जोर दिया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 बजे बुलाई गई है। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने सेवा प्रदाता स्वास्थ्य संस्थानों का चालू आर्थिक वर्ष के मार्गशीर्ष तक का बकाया भुगतान कर दिया है। बोर्ड ने आज जारी विज्ञप्ति में बताया कि 23 अरब 44 करोड़ 2,98,015 रूपये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके साथ ही मार्गशीर्ष तक के सभी लंबित दावों का निपटारा हो गया है। बोर्ड ने कहा कि पौष से लंबित दावों के भुगतान के लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था और स्थायी वित्तीय स्रोत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित निकायों के साथ समन्वय जारी है। बोर्ड ने सभी सेवा प्रदाता स्वास्थ्य संस्थानों से स्वास्थ्य बीमा के तहत बीमित नागरिकों को बिना किसी बाधा के निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही बीमित नागरिकों से स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने और अनावश्यक जांच या उपचार की मांग न करने की अपील की गई है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से भी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की प्रभावशालिता और दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने में सहयोग देने का आग्रह किया। मेलमची पेयजल विकास समिति ने मॉनसून अवधि भर के लिए काठमांडू उपत्यका में मेलमची के पानी की आपूर्ति बंद कर दी है। समिति ने बताया कि मुहाना क्षेत्र के ऊपर भूस्खलन, मलबा और बाढ़ के कारण सुरंग में मिट्टी और पत्थर प्रवेश करने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही पानी में अधिक गाद होने से सुरंग की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी कारण मानसून समाप्त होने तक पानी का डायवर्जन रोक दिया गया है। समिति के अनुसार इस अवधि में सुरंग की सफाई, मरम्मत और निरीक्षण भी किया जाएगा। मानसून समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द मेलमची का पानी फिर से काठमांडू उपत्यका में आपूर्ति शुरू की जाएगी। इस बीच वैकल्पिक स्रोतों से पेयजल आपूर्ति जारी रखने के लिए काठमांडू उपत्यका खाने पानी लिमिटेड के साथ समन्वय किया जाएगा। नेपाल पुलिस ने मानसून से संभाव्य आपदाओं से जनधन की क्षति कम करने और राहत एवं बचाव कार्य को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय पुलिस प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफले ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से लेकर स्थानीय चौकियों तक आवश्यक उपकरणों के साथ पुलिस बल को तैयार रखा गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल तैनाती के लिए 10,085 पुलिसकर्मियों को तैयार रखा गया है। उन्होंने कहा कि जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, बचाव उपकरणों का रखरखाव और विभिन्न सुरक्षा निकायों के साथ समन्वय पहले ही किया जा चुका है। मानसून के दौरान राहत एवं बचाव अभ्यास और सामुदायिक जनचेतना कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय निकायों और संबंधित संस्थाओं के सहयोग से अतिरिक्त बचाव सामग्री की भी व्यवस्था की जाएगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण देश के विभिन्न स्थानों पर अवरुद्ध हुए प्रमुख राजमार्गों में से 3 सड़कों को फिर से संचालन में लाया गया है, जबकि जाजरकोट डोल्पा को जोड़ने वाला भेरी कॉरिडोर अभी भी बंद है। नेपाल पुलिस के केंद्रीय प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफले के अनुसार आषाढ़ 15 को भूस्खलन के कारण बंद हुई अर्घाखांची जिले की पाणिनी गांवपालिका 2 स्थित साल झंडी ढोरपाटन सड़क, आषाढ़ 17 को भूस्खलन के कारण बंद हुई पालपा जिले के तानसेन नगरपालिका 8 के डुमरी क्षेत्र में स्थित सिद्धार्थ राजमार्ग और आषाढ़ 18 को भूस्खलन से अवरुद्ध हुए चितवन जिले की इच्छा कामना गांवपालिका 6 स्थित मुगलिन नारायणगढ़ सड़क खंड को पुनः यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसी प्रकार आषाढ़ 17 को लगातार हुई बारिश के कारण रुकुम पश्चिम जिले के 8 बिस्कोट नगरपालिका 6 के रिजेगाड़ खोला क्षेत्र में स्थित जाजरकोट डोल्पा को जोड़ने वाला भेरी कॉरिडोर अभी तक पूरी तरह बंद है। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्रालय ने बर्ड फ्लू से प्रभावित किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए बजट का पुनर्विनियोजन करते हुए पशु सेवा विभाग को 50 करोड़ रूपये जारी किए हैं। मंत्रालय ने बर्ड फ्लू की पुष्टि होने वाले 11 जिलों में नष्ट किए गए पक्षियों, अंडों और पशु चारे के नुकसान की भरपाई के लिए ये राशि विभाग को उपलब्ध कराई है। औषधि व्यवस्था विभाग ने देश में दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और दवा बाजार को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से 6 सूत्रीय निर्देश जारी किए हैं। औषधि व्यवस्था विभाग की कार्यवाहक महानिदेशक शिवानी खड़गी ने बताया कि दवाओं की आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने और बाजार को व्यवस्थित करने के लिए ये निर्देश स्वदेशी दवा निर्माताओं, आयातकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए जारी किया गया है। निर्देश के अनुसार सभी स्वदेशी दवा निर्माता और दवा आयातकों को अपने अधिकृत थोक विक्रेताओं के साथ लिखित समझौता करना अनिवार्य होगा। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि लिखित समझौते के बिना किसी भी प्रकार की दवा की आपूर्ति या वितरण करना प्रतिबंधित होगा। काठमांडू महानगर पालिका ने पंचरी डांडा में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा कम करने के उद्देश्य से 10 वार्डों में स्रोत स्तर पर ही कचरे के वर्गीकरण की शुरुआत की है। महानगर पालिका के पर्यावरण विभाग की प्रमुख सरिता राय ने बताया कि पंचरी डांडा स्थित कचरा प्रबंधन स्थल की उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए स्रोत स्तर पर ही कचरे का वर्गीकरण और उसका उचित प्रबंधन शुरू किया गया है। निजामती कर्मचारी अस्पताल की सेवा इकाई का संचालन अब सिंहदरबार से ही शुरू हो गया है। ये सेवा इकाई भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय की इमारत के भूतल पर आज से संचालित की गई है। मंत्रालय ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को आसानी और शीघ्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पताल की इस सेवा इकाई की शुरुआत की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सीमा पर स्थित दाना सर क्षेत्र में एक बस हादसे में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। बलूचिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा शेरानी जिले में एक यात्री बस के साथ हुआ। क्वेटा में रेस्क्यू 11-22 के एक प्रवक्ता के मुताबिक बस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के सहायक शाहिद दुरिंद्र ने दुर्घटना में 40 लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि 8 यात्री घायल भी हुए हैं। उनका कहना है कि शुरुआती जानकारी से पता चला है कि हादसे की शिकार बस में अपने यात्रियों के अलावा एक अन्य बस के यात्री भी सवार थे, जो खराब हो गई थी। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बस एक गहरी खाई में गिर गई, जिससे यात्रियों तक पहुंचना और उन्हें बचाना मुश्किल हो गया। दुर्घटना स्थल से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि बस पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बीती फरवरी में अमेरिका और इसराइल के हवाई हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार घोषित समय से पहले शुरू हो गया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक पहले यह घोषणा की गई थी कि इस्लामिक गणराज्य के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का अंतिम संस्कार शुक्रवार शाम को शुरू होगा, लेकिन विदेशी मेहमानों की ओर से श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो चुका और जारी है। इरना के अनुसार इसमें शहीद क्रांतिकारी नेता और उनके परिवार के कई सदस्यों के शवों को तेहरान मोसल्ला के मंच के सामने रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों व प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत कर रहे हैं। इरना का कहना है कि अली खामेनेई के दामाद मिसबाह अल होदा व घेरी कानी को भी शुक्रवार को तेहरान के पश्चिम में शहरान स्क्वायर और कानी गांव में दफनाया जाएगा और संभवतः बाद में उन्हें मोसल्ला ले जाया जाएगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त उपकुलपतियों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद पर मान बहादुर कार्की को नियुक्त करने की संवैधानिक परिषद ने की सिफारिश। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने चालू आर्थिक वर्ष के मार्गशीर्ष तक की 23 अरब 44 करोड़ बकाया राशि की भुगतान। मानसून से संभाव्य आपदा में जनधन की बड़ी क्षति न होने देने और उद्धार कार्य को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस की पूर्व तैयारी हुई पूरी। मानसून के दौरान काठमांडू घाटी में मेलमची पेयजल की आपूर्ति रहेगी बंद और पाकिस्तान में एक बस हादसे में कम से कम 40 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।